नमस्कार, मैं अजीत कुमार, बीए द्वितीय वर्ष का छात्र। मैं भारत का संविधान पुस्तक, जो कि डॉक्टर डीडी बसु द्वारा लिखित है, के अंतर्गत पाठ निर्वाचन की रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। निर्वाचन। संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया अधिकथित की गई है। संघ और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन की प्रक्रिया विधान द्वारा बनाए जाने के लिए छोड़ दी गई है। संविधान में इसके बारे में कुछ सिद्धांत बताए गए हैं। ये सिद्धांत हैं, पहला है सांप्रदायिक पृथक या विशेष प्रतिनिधित्व के लिए कोई उपबंध नहीं है। संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक नामावली होगी और केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा। यह बात अनुच्छेद 325 के अंतर्गत लिखित है। दूसरा, निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और 18 वर्ष की आयु से कम का नहीं है, निर्वाचन में मत देने का हकदार होगा। परंतु यह तब, जबकि वह संविधान का समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्त विकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा परहरित नहीं कर दिया जाता है। यह बात अनुच्छेद 326 के अंतर्गत लिखित है। अगला शीर्षक होगा विधानमंडल की शक्ति। पूर्वोक्त सिद्धांतों के और संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ की संसद और राज्य के विधानमंडलों के सदनों के लिए निर्वाचन से संबंध में सभी विषयों से संबंधित विधि बनाने की शक्ति संघ की संसद को है। अनुच्छेद 327 सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 72 में यह बात लिखी हुई है। इस विषय में राज्य विधान मंडल को अनुषंगी शक्ति है। वह राज्य विधान मंडल से संबंधित निर्वाचन के अन्य विषयों पर उस सीमा तक विधान बना सकती है जहां तक ऐसे विषय संघ के विधान द्वारा आच्छादित नहीं है। दूसरे शब्दों में राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधियां तभी विधि मान्य होंगी जब वे संसद द्वारा बनाई गई विधि के विरोध में न हों। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वे संविधान के उपबंधों के विरुद्ध नहीं हो सकती हैं। यह बात अनुच्छेद 328 में लिखित है। संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 बनाए हैं तथा परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 और 1972 बनाए हैं और इनसे निर्वाचन का ढंग विहित किया है तथा निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की रचना और उनका परिसीमन किया है। अगला शीर्षक है एक सदस्यीय प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। इन अधिनियमों द्वारा विहित प्रक्रिया एक सदस्यीय प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान पर आधारित है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति विहित की गई है, किंतु संघ और राज्य के विधान मंडलों में निर्वाचन के लिए वह पद्धति नहीं अपनाई गई है। अगला शीर्षक है सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवादों का विनिश्चय। इतने बड़े पैमाने पर निर्वाचन में विवाद उत्पन्न होना अवश्यंभावी है। जिन बातों पर विवाद हो सकता है वे हैं, क्या निर्वाचन की प्रक्रिया का उचित रूप से अनुसरण किया गया था या क्या निर्वाचित अभ्यर्थी संविधान या विधि के अधीन किसी निर्हरता से ग्रस्त था या कोई अभ्यर्थी जिसे वास्तव में निर्वाचित घोषित किया जाना था इस प्रकार घोषित नहीं किया गया है। ऐसी बातों के विनिश्चय के लिए संविधान में यह उपबंध है कि देश के सामान्य न्यायालयों को कोई आधिकारिकता नहीं होगी और निर्वाचन से संबंधित प्रश्न केवल निर्वाचन अर्जी के माध्यम से ही विधि में उपबंधित रीति से प्रस्तुत किया जाएगा। यह बात अनुच्छेद 329 के अंतर्गत लिखित है। अनुच्छेद 329 में यह उपबंध इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान मंडल के सदन या प्रत्येक के लिए कोई निर्वाचन ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका समुचित विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा था उसके अधीन उपबंध किया जाए, अन्यथा नहीं। १९९६ के अंत तक यथा विद्यमान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार निर्वाचन अर्जी का विनिश्चय करने की शक्ति उच्च न्यायालय में है और इससे अपील उच्चतम न्यायालय को हो सकती है। संविधान अधिनियम 1976 द्वारा अंतर्स्थापित अनुच्छेद 323 ख में समुचित विधानमंडल को यह शक्ति दी गई है कि वह विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में विवादों के न्याय निर्णयन के लिए विधि बनाकर अधिकरण की स्थापना कर सकेगी और ऐसी विधि में यह उपबंध कर सकेगी कि किसी न्यायालय को इस विषय में कोई अधिकारिता नहीं होगी। संक्षेप में, जब इस शक्ति के प्रयोग में कोई विधि बनाई जाती है तो निर्वाचन विवाद उस उच्च न्यायालय को कोई आधिकारिकता नहीं होगी। यह विवाद विधि द्वारा स्थापित प्रशासनिक अधिकरण द्वारा अवधारित किए जाएंगे और ऐसे अधिकरण के विनिश्चय से अपील अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष इजाजत लेकर उच्चतम न्यायालय में की जा सकेगी। जून 1995 तक उच्च न्यायालय की आधिकारिकता का उपवर्जन करके अनुच्छेद 323 ख को लागू करते हुए इस कार्य के लिए कोई प्रशासनिक अधिकरण स्थापित नहीं किया गया है। अगला शीर्षक होगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों के लिए विशेष आधिकारिकता। संविधान के अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का न्याय निर्णयन करने के लिए एकमात्र पीठ है उच्चतम न्यायालय। प्रधानमंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष के लिए कोई विशेष उपबंध नहीं है, इसलिए इन पदों के निर्वाचन के लिए विवाद का अवधारण अनुच्छेद 329 ख के अनुसार उच्चतम न्यायालय के समक्ष निर्वाचन अर्जी द्वारा किया जाएगा। अगला शीर्षक है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया और तंत्र का अधीक्षण करने के लिए और कुछ अन्य अनुषंगी कार्यों के लिए संविधान ने निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का उपबंध किया है। निर्वाचन आयुक्त को हटाए जाने के लिए जो उपबंध हैं उसके कारण वह कार्यपालिका के नियंत्रण से स्वतंत्र हो जाता है और देश के सत्तारूढ़ दल के नियंत्रण से मुक्त निर्वाचन सुनिश्चित हो जाता है। यह बात अनुच्छेद 324 के अंतर्गत लिखी गई है। प्रारंभ से निर्वाचन आयोग में केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता था। कांग्रेस आई सरकार ने नवे साधारण निर्वाचन के प्रारंभ होने से ठीक एक सप्ताह पहले 16 अक्टूबर 1989 को दो और आयुक्त नियुक्त करके इसे बहुउद्देश्यीय आयोग बना दिया। कुछ लोगों ने इसकी आलोचना करते हुए यह कहा कि जिस जल्दी में नए सदस्यों की नियुक्ति की गई उससे ऐसा आभास होता है कि आयोग की स्वतंत्रता कम करने का प्रयत्न किया गया है। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने सत्ता में आने पर नियमों का संशोधन करके आयोग को फिर से एक सदस्यीय बना दिया। नए नियम 2 फरवरी 1990 को लागू हुए। निर्वाचन आयोग की सेवा की शर्तें और पदावधि वह होगी जो संसद विधि द्वारा विहित करे, परंतु मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकेगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से और साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटा सकता है, अन्यथा नहीं। निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधानमंडल के सभी निर्वाचनों के लिए और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की शक्ति होगी। यह बात अनुच्छेद 324 के क्लोज नंबर 1 में लिखी गई है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करके निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक आयुक्त नियुक्त कर सकेगा। यह बात अनुच्छेद 324 के क्लोज नंबर 4 में लिखित है। 1/10/1993 को सरकार ने एक अध्यादेश जो तत्पश्चात अधिनियम में परिवर्तित हो गया था प्रख्यापित करके दो निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने का उपबंध किया। शीघ्र ही दो आयुक्त नियुक्त कर दिए गए। उस अध्यादेश में कार्य वितरण और कार्य संचालन की प्रक्रिया को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। न्यायालय ने कुछ निर्देश दिए गए थे। यह विषय अधिनियम को विधिमान्य ठहराते हुए अंतिम रूप से निपटा दिया गया है। और इस प्रकार से यह पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।